दिन भर 12 सितंबर दिन मंगलवार, मैं हूं रेहान फदल। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने म्यांमार से कहा वो रोहिंग्या समस्या को मानवता की दृष्टि से देखे।
म्यांमार शुड टेक ऑल द सिटीजंस बैक टू देयर कंट्री, दे शुड क्रिएट अ कंजीनियल एटमॉस्फेयर सो दैट दे।
देखेंगे रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन क्या सोचते हैं नोटबंदी के बारे में।
ये तो नेगेटिव जो इफेक्ट्स हैं वो सीधे आए हैं, तुरंत आए हैं, और ये जो पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं शायद लॉन्ग टर्म है, देखना है कि कितना है।
चर्चा होगी राहुल गांधी के बर्कले विश्वविद्यालय में दिए गए भाषण की भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, हरिता कांडपाल से। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बीबीसी से कहा कि बांग्लादेश की सरकार सेना या सुरक्षा बलों को रोहिंग्या मुस्लिमों पर हमला करने की इजाजत नहीं देती। म्यांमार के रखाइन प्रांत में हिंसा के कारण 370,000 से ज्यादा रोहिंग्या मुस्लिम शरणार्थी पिछले करीब दो हफ्ते में बांग्लादेश पहुंचे हैं। म्यांमार की नेता आंग सान सूची को दिए एक निजी संदेश में शेख हसीना ने कहा कि म्यांमार को शरणार्थियों को वापस लेना चाहिए क्योंकि ये लोग म्यांमार के हैं। इस बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कल रोहिंग्या संकट पर चर्चा के लिए एक आपात बैठक बुलाने का फैसला करने जा रही है। चीन ने कहा है कि वो शांति और स्थिरता को बनाए रखने के म्यांमार के अधिकार का समर्थन करता है। वहीं ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खमेनी ने सभी मुस्लिम राष्ट्रों को मिलकर रोहिंग्या मुस्लिमों के लिए म्यांमार की सरकार पर दबाव बनाने की अपील की है। मुस्लिम देशों को समाधान के लिए आगे आना होगा। हम नहीं कह रहे हैं कि वो सेना भेजें, लेकिन राजनीतिक और आर्थिक दबाव बनाया जा सकता है। ये थे आयतुल्ला अली खमेनी के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या के विरोध में आज बेंगलुरु में 15,000 से ज्यादा लोगों ने प्रदर्शन किया है। वरिष्ठ पत्रकार और दक्षिणपंथियों की आलोचक रही गौरी लंकेश की पिछले हफ्ते उनके घर के पास हत्या कर दी गई थी। 21 नागरिक समूहों ने इस विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया था। इन लोगों ने गौरी लंकेश के लिए न्याय की अपील की है। उत्तर कोरिया ने संयुक्त राष्ट्र की तरफ से लगाए गए नए प्रतिबंधों की आलोचना की है। उत्तर कोरिया के दूत ने जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र के निरस्त्रीकरण विषय पर एक सम्मेलन में कहा कि उत्तर कोरिया संयुक्त राष्ट्र के तथाकथित गैरकानूनी प्रस्ताव को खारिज करता है। नए प्रतिबंधों का असर उत्तर कोरिया में तेल आयात और कपड़ा निर्यात पर होगा। इसका लक्ष्य उत्तर कोरिया की आमदनी और ऊर्जा के लिए आयात को निशाना बनाना है, जिससे प्योंगयांग के परमाणु कार्यक्रम के लिए फंड जुटाया जाता है। उत्तर कोरिया के प्रमुख आर्थिक सहयोगी चीन ने इस प्रतिबंध के पक्ष में वोट डाला था, लेकिन परमाणु संकट को बातचीत से सुलझाने की भी अपील चीन ने की है। जिनेवा में हो रहे इस सम्मेलन में अमरीकी दूत रॉबर्ट वुड ने कहा कि नए प्रतिबंधों से पता चलता है कि उत्तर कोरिया को लेकर दुनिया का धैर्य खत्म हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने कल के प्रस्ताव से उत्तर कोरिया की सरकार को संकेत दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अब इस सरकार के उकसाने वाले बर्ताव को और नहीं सहेगी और वो कार्रवाई के लिए तैयार है। इन प्रतिबंधों से उत्तर कोरिया के परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम की फंडिंग रोकने में मदद मिलेगी। हम सभी देशों से इन नए और पहले से मौजूद प्रतिबंधों को कड़ाई से लागू करने की अपील करते हैं। ये थे रॉबर्ट वुड के शब्द। इस बीच चीन के कुछ बड़े बैंकों ने उत्तर कोरिया के नागरिकों और कंपनियों के खाता खोलने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इससे पहले अमरीका ने उत्तर कोरिया से संबंध रखने वाले चीनी बैंकों को पर कार्रवाई करने की धमकी दी थी। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। तुर्की रूस से एडवांस एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल खरीदने जा रहा है। अमेरिका ने रूस और नेटो गठबंधन सदस्य देश तुर्की के इस विवादित फैसले का विरोध किया है। अमेरिका का कहना है कि रूस की एडवांस एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें नेटो गठबंधन के हथियारों से मेल नहीं खाएंगी। इस्तांबुल में बीबीसी संवाददाता ने तुर्की से अमरीकी और जर्मन एंटी मिसाइल सिस्टम वापस लेने और उसके बाद अब रूस से सिस्टम खरीदने के तुर्की के राष्ट्रपति के फैसले के बारे में बताया कि ये एक राजनीतिक दांव है और ये नेटो गठबंधन को उनका दो टूक जवाब है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फदल का। शुरुआत करते हैं म्यांमार से। म्यांमार से भागकर बांग्लादेश में शरण ले रहे रोहिंग्या मुसलमानों से आज बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मुलाकात की है। इसके बाद उन्होंने म्यांमार से अनुरोध करते हुए कहा कि वो पूरी स्थिति को मानवता के नज़रिए से देखकर इसका हल निकाले। बीबीसी संवाददाताओं की भेजी रिपोर्टों का सार सुनिए पायल भुयन से।
प्रधानमंत्री शेख हसीना ने साफ शब्दों में कहा है कि म्यांमार सरकार को रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ फौजी ताकत का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आज उन्होंने बांग्लादेश के कटुपलोंग इलाके में बनाए गए सरकारी शरणार्थी शिविर का दौरा करके वहां रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि मानवीय नजरिए से इस समस्या का हल निकाला जाना चाहिए।
हमारी संसद ने ये प्रस्ताव पारित किया है जिसमें कहा गया है कि म्यांमार को अपने लोगों को वापस बुलाना चाहिए और उनके रहने के लिए अनुकूल माहौल बनाना चाहिए।
ये थे प्रधानमंत्री शेख हसीना के शब्द। साथ ही उन्होंने संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से भी अपील की है कि वो म्यांमार पर दबाव बनाए। रोहिंग्या संकट की जब से शुरुआत हुई है तब से हजारों हजार रोहिंग्या सीमा पार कर बांग्लादेश पहुंच चुके हैं। बौद्ध बहुल रखाइन प्रांत में रोहिंग्या अल्पसंख्यक हैं जिन्होंने म्यांमार में लंबे समय तक उत्पीड़न झेला है। बांग्लादेश में सरकार ने दो शरणार्थी शिविर बनाए हैं जो पूरी तरह से भर चुके हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के क्रिस लॉन्स्टीन लोम ने शरणार्थी शिविर के हालात का ब्यौरा दिया।
वो जहाँ तहाँ रह रहे हैं, जंगलों में, सड़कों पर। उनकी हालत खराब है और अभी ये नहीं कहा जा सकता है कि आने वाले शरणार्थियों की संख्या में कमी हो रही है, बल्कि ये संख्या बढ़ रही है। ऐसी किसी ने कल्पना नहीं की थी। 25 अगस्त से अब तक 17 दिन में लगभग 370,000 शरणार्थी सीमा पार कर आ चुके हैं।
ये थे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के क्रिस लॉन्स्टीन लोम के शब्द। सहायता एजेंसियों का कहना है कि यहाँ पहुँच रहे नए लोगों को खाने, रहने और डॉक्टरी मदद की सख्त जरूरत है। शेख हसीना से पूछा गया कि रोहिंग्या को बांग्लादेश में रहने की इजाजत कब तक है, तो उन्होंने शरणार्थियों के प्रति सहानुभूति जाहिर की।
जब तक वो उन्हें वापस नहीं लेते, हम उन्हें बाहर तो निकलने को नहीं कह सकते ना। हम इंसान हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते।
म्यांमार से बांग्लादेश में रोहिंग्या मुसलमानों के आने का सिलसिला 70 के दशक से जारी है। करीब 3 लाख रोहिंग्या शरणार्थी बांग्लादेश के सरकारी राहत शिविर में पंजीकृत हैं, लेकिन उतनी ही संख्या उन रोहिंग्याओं की भी है जिनके लेखा जोखा बांग्लादेश सरकार के पास नहीं है। बांग्लादेश ये मानता है कि रोहिंग्याओं की इतनी तादाद से उनके स्थानीय संसाधनों पर दबाव पड़ा है। साथ ही कॉक्सबाजार इलाके में अपराध भी बढ़ा है। म्यांमार की सेना का कहना है कि उनकी लड़ाई रोहिंग्या चरमपंथियों से है, न कि नागरिकों से। लेकिन वहीं अपने घर छोड़कर भागे रोहिंग्याओं का कहना है कि सेना ने 25 अगस्त को उन पर सुनियोजित हमला किया ताकि वो अपने गांव को छोड़कर भाग जाएं।
बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की रोहिंग्या शरणार्थियों से मुलाकात। उधर बांग्लादेश में रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर जहां सरकार के अंदर चिंता है, वहीं बांग्लादेश का जनमानस भी इस घटनाक्रम को नहीं पचा पा रहा है। मैंने बांग्लादेश गए बीबीसी संवाददाता नितिन श्रीवास्तव से संपर्क किया और पूछा कि रोहिंग्या लोगों के इतनी बड़ी तादाद में बांग्लादेश पहुंचने को वहां का जनमानस किस तरह से ले रहा है।
बांग्लादेश का जो समाज है वो इसको दो तरह से देख रहा है। पहली जो ओवरवेलमिंग फीलिंग है यहाँ पर, ज्यादातर जनमानस जो है वो इस बात के पक्ष में है कि जो रोहिंग्याज हैं, जो रिफ्यूजीज हैं, शरणार्थी हैं, उनको बांग्लादेश को शरण देनी चाहिए, उनको प्रोटेक्शन देना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। ये एक ऐसी फीलिंग है जो यहाँ पर ज्यादातर लोगों में दिखती है और उसके साथ साथ सरकार का भी रवैया अभी तक ऐसा ही दिखा है। दूसरी जो फीलिंग है, जो दिखती है, वो गवर्नमेंट की भी है और तमाम लोगों की लोकल लेवल पर है, वो ये है कि अगर इस तरह से बांग्लादेश में हजारों लाखों की तादाद में शरणार्थी आते रहेंगे तो बांग्लादेश की जो इकोनॉमी है और जो बांग्लादेश की पॉपुलेशन है उस पर जो प्रेशर है वो बढ़ सकता है। उसकी वजह जो है वो ये है कि ये पहली बार नहीं हो रहा है, हालांकि ये जरूर पिछले 25 से 30 साल में सबसे ज्यादा ऐसा देखने मिला है कि 3 लाख से ज्यादा शरणार्थी एकाएक कुछ हफ्तों के दरमियान सीमा पार कर बांग्लादेश आ गए हैं और उनका आना अभी भी बदस्तूर जारी है। लेकिन पिछले साल यानी 2016 में जो सरकारी आंकड़े हैं वो बताते हैं कि 85,000 से ज्यादा रोहिंग्या आए थे बांग्लादेश में, उनको शरण मिली। तो एक तरह से लोगों में इस बात को लेकर थोड़ा सा कहीं ना कहीं कसक है, थोड़ा सा गुस्सा भी है कि आखिरकार हम इस तरह से अपनी सीमा को जो है उस तरह से प्रोटेक्ट क्यों नहीं कर पा रहे। जाहिर है जिस एरिया में, जो दक्षिण बांग्लादेश का एरिया है, सदर्न बांग्लादेश का, वहां पर जो सोशल फैब्रिक है, जो जनसंख्या का जो समीकरण है, वो इस तरह की लगातार बढ़ती तादाद से उसमें एक खासा परिवर्तन देखा जा रहा है।
ये बताइए, किसी तरह के विरोध प्रदर्शन का भी कार्यक्रम है बर्मा की सरकार के खिलाफ?
काफी ज्यादा विरोध की भावना है रेहान साहब, यहाँ पर ढाका में और आसपास के इलाकों में। पिछले दो दिनों से जो म्यांमार बर्मा की एम्बेसी है उसके आसपास जबरदस्त सुरक्षा कर दी गई है, और उसके बाद दो जगह दो बार ऐसा हुआ है कि धरने प्रदर्शन और थोड़े से उग्र होते हुए प्रदर्शनकारी भी वहां पर रोके गए हैं। पुलिस रैपिड एक्शन फोर्स वहां पर डिप्लॉयड है, सुरक्षा बढ़ाई जा रही है, न सिर्फ एम्बेसी और कमीशन पर, बांग्लादेश में जो तमाम बुद्धिस्ट मठ है और जो बौद्ध धर्म के लोगों के निवास स्थान है और इलाके हैं, वहां पर भी सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। तो विरोध की भावना दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, उस तादाद की तरह जो बर्मा से अभी भी बांग्लादेश में शरणार्थियों का आना जारी है।
ये थे ढाका से बीबीसी संवाददाता नितिन श्रीवास्तव।
75 वर्षों से आपके साथ
बीबीसी हिंदी रेडियो,
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
राहुल गांधी ने बर्कले विश्वविद्यालय में अपने संबोधन में नोटबंदी की आलोचना करते हुए कहा है कि केंद्र सरकार के इस फैसले से रातों रात 86% नकदी देश की अर्थव्यवस्था से बाहर हो गई थी। राहुल ने बढ़ रही हिंसा की घटनाओं का भी जिक्र करते हुए कहा कि अब अहिंसा के विचार पर हमला हो रहा है। राहुल का कहना था कि ध्रुवीकरण की राजनीति काफी खतरनाक होती है। न्यूयॉर्क से सलीम रिजवी ने ये रिपोर्ट भेजी है।
दो हफ्ते के दौरे पर अमेरिका आए हुए कांग्रेस उपाध्यक्ष ने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली में छात्रों के समक्ष बोलते हुए मोदी सरकार को निशाना बनाया और कहा कि भारत में विभाजन की राजनीति देश के लिए हानिकारक है।
लिबरल जर्नलिस्ट बीइंग शॉट, पीपल बीइंग लिंच्ड बिकॉज़ दे आर दलित्स, मुस्लिम्स किल्ड ऑन सस्पिशन ऑफ ईटिंग बीफ। This is new in India and damages India very badly.
राहुल गांधी ने कहा कि अभी तक भारत की ताकत यही रही है कि जो कुछ भी हासिल किया शांतिपूर्वक किया, नफरत, गुस्सा और ध्रुवीकरण की राजनीति देश के आर्थिक विकास की गति को बर्बाद कर देगी। राहुल गांधी ने मोदी सरकार की आर्थिक नीति की भी आलोचना की, खासकर नोटबंदी के फैसले को खुद ही से लगाया गया जख्म बताया।
Demonetization, a completely self-inflicted wound, caused approximately 2% loss.
कश्मीर पर बोलते हुए राहुल गांधी का कहना था कि कांग्रेस के दौर में 2013 तक आतंकवाद की कमर तोड़ दी गई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के दौरान आतंकवाद में बढ़ावा हुआ है। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने ये जरूर स्वीकार किया कि 2014 में कांग्रेस को घमंड हो गया था और शायद इसीलिए पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा। भारत के प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी संबंधी एक सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि वो अपनी पार्टी की ओर से 2019 के चुनावों में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हालांकि उन्होंने ये साफ किया कि इस पर फैसला पार्टी ही करेगी।
I'm absolutely ready to do that, but the way our party works, we have an organizational election process that decides that.
राहुल गांधी ने यह भी कहा कि उनके खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली में 1949 में भारत के प्रधानमंत्री रहते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी भाषण दिया था। राहुल गांधी के भाषण के समय इमारत के बाहर कुछ प्रदर्शनकारी 1984 के सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों को इंसाफ दिलाने की मांग कर रहे थे। इस सिलसिले में राहुल गांधी ने कहा कि वो भी प्रदर्शनकारियों से सहमत हैं कि सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों को इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन 1984 के बाद से अब तक कई कांग्रेस और भाजपा की सरकारें आ चुकी हैं, लेकिन बहुत से दंगा पीड़ित अब भी इंसाफ के इंतजार में हैं। सलीम रिजवी, न्यूयॉर्क।
उधर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के बर्कली में दिए गए भाषण को लेकर सूचना और प्रसारण मंत्री स्मृति ईरानी ने तीखा हमला किया है। ईरानी ने कहा है कि राहुल ने अपनी मां कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को अहंकारी कहकर पूरी कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अगर ऐसा है तो इस बारे में कांग्रेस को आत्मचिंतन करने की जरूरत है। ईरानी का कहना था कि राहुल गांधी का यह कहना कि ये देश परिवारवाद से चलता है आधारहीन है और ये उनकी निजी सोच है। और अब एक दूसरा विषय। रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन आजकल अपनी नई किताब आई डू व्हाट आई डू की वजह से चर्चा में है, जिसमें उन्होंने अपने रिजर्व बैंक के दिनों पर काफी विस्तार से चर्चा की है। बीबीसी संवाददाता समीर हाशमी ने रघुराम राजन से पूछा कि आपकी नजर में क्या नोटबंदी का वो असर नहीं दिखाई दिया जिसकी उम्मीद की जा रही थी, या इसके दीर्घकालिक असर दिखाई देंगे?
देखना है कि ये जो डिपॉजिट्स आए हैं सिस्टम में, क्या अगर उनको इन्वेस्टिगेट करें और देखें कि कहां से आए, कि लोगों ने टैक्स दिया है कि इनके ऊपर, तो अभी भी हम पकड़ सकते हैं जो लोग जिन्होंने टैक्स नहीं दिया इन डिपॉजिट्स पे। और आने वाले दिनों में हमें देखना है कि क्या लोग इस डिमोनेटाइजेशन के कारण अपने टैक्सेस भरते हैं, और अगर वो भरेंगे तो एक इस डिमोनेटाइजेशन का एक पॉजिटिव असर है इसके कारण। नेगेटिव असर तो हम देख सकते हैं कि जीडीपी गिर रहा है, ये जो किसान हैं उनके दाम गिरे हैं, थोड़ा स्ट्रेस है। क्या ये सब डिमोनेटाइजेशन के कारण हुआ है या किसी और कारण के लिए हुआ है, हम ठीक से नहीं बता सकते हैं, लेकिन लगता है कि थोड़ा तो असर हुआ है। यहाँ पे जीडीपी तो गिरा है दो क्वार्टर्स के लिए, इनफॉर्मल सेक्टर में काफ़ी स्ट्रेस है, तो इसलिए ये तो नेगेटिव जो इफ़ेक्ट्स हैं वो सीधे आए हैं, तुरंत आए हैं, और ये जो पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं शायद लॉन्ग टर्म है, देखना है कि कितना है।
लेकिन आपने अपनी किताब में भी लिखा है कि आपसे जब गवर्नमेंट ने, सरकार ने राय मांगी थी आपके टर्म ख़त्म होने से पहले डीमोनेटाइजेशन पे, आपने उनको मना किया था कि ये इम्प्लीमेंट ना करें क्योंकि इससे काफ़ी नुकसान पहुँच सकता है शॉर्ट टर्म में इकॉनमी के ऊपर।
हाँ, हमारा ये जजमेंट था अगर हम सारे शॉर्ट टर्म कॉस्ट को टैली करें और लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स को देखें कि शॉर्ट टर्म कॉस्ट ज़्यादा होंगे, और इसलिए हमने सोचा कि शायद ये इस पॉलिसी का नेट इफेक्ट अच्छा नहीं होगा
आगे चलकर। एक जो सवाल बहुत बड़ा खड़ा हुआ है जब से डीमोनेटाइजेशन हुआ है कि आरबीआई जो है क्या वो ऑटोनमस है, वो इंडिपेंडेंट है? ये आपने भी अपनी किताब में इस पे सवाल उठाया है कि आरबीआई को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ऑटोनमस होना चाहिए, लेकिन काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि जिस तरह सरकार ने डिसीजन लिया लगता नहीं है कि आरबीआई की जो ऑटोनमी थी वो रिस्पेक्ट की गई।
ऑटोनमी की बात तब उठती है जब गवर्नमेंट आरबीआई को जिस जगह में आरबीआई का ऑटोनमी है गवर्नमेंट वो छीन लेती है, लेकिन इस मामले में 1978 में गवर्नमेंट ने अपने आप डीमोनेटाइजेशन किया बिना आरबीआई को पूछे, या शायद आरबीआई को उन्होंने पूछा था लेकिन ये ऑर्डिनेंस के माध्यम से उन्होंने किया था, तो इसलिए मेरे ख्याल में ये ऑटोनॉमी का सवाल नहीं उठता है।
तो इसको चेंज करने की जरूरत है आपको लगता है इस इशू के ऊपर भी?
वो तो लेजिस्लेटर सोचेंगे, अगर वो इस एक्सपीरियंस को देख के सोचते हैं कि शायद ऑटोनॉमी दिया जाए आरबीआई को, वो उनका डिसीजन है।
पर आपके लिहाज में ज़रूरत है इसकी कि इस पे भी आरबीआई की ऑटोनॉमी?
नहीं, मेरे ख्याल में जो भी गवर्नमेंट में हैं वो इस एक्सपीरियंस को देख के अपने डिसीजंस बनाएंगे सोच समझ के।
रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन से बात कर रहे थे बीबीसी संवाददाता समीर हाशमी।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
बीबीसी हिंदी।
ये बीबीसी है, आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फदल के साथ। संयुक्त एआईडीएमके ने एक प्रस्ताव पास करके वीके शशिकला को न केवल जनरल सेक्रेटरी के पद से बर्खास्त कर दिया है बल्कि पार्टी से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया है। पनीर सेल्वम और पलिनी स्वामी धड़े की ओर से बुलाई गई जनरल काउंसिल की बैठक में यह प्रस्ताव पास किया गया। पार्टी प्रवक्ता ने बताया है कि जयललिता ने पार्टी पदाधिकारियों के तौर पर जिनको भी नियुक्त किया था वो बने रहेंगे। पार्टी अब अविभाजित है और चुनाव चिन्ह के तौर पर दो पत्ती को वापस लेने की भी कोशिश करेगी। इमरान कुरैशी की रिपोर्ट।
वीके शशिकला को पार्टी के अंतरिम महासचिव के पद से निकालना कोई आसान बात नहीं है। शशिकला वही हैं जो जयललिता के देहांत के बाद हर किसी ने उनके पैर पकड़े और कहा कि वो अम्मा के बाद चिन्नम्मा हैं और पार्टी को बचाना है तो सिर्फ वही कर सकती हैं। लेकिन 8 महीनों बाद ओ पन्ने सेल्वम और एडप्पडी पलनी स्वामी के गुट फिर से जुड़ गए और आज जनरल काउंसिल ने उन्हें पद से हटा दिया। वो वही पद है जो शशिकला ने चाहा था और पार्टी का हर लीडर उनको सौंपना चाहा था। बहरहाल जनरल काउंसिल ने दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर वी मैत्रेयन ने बीबीसी को बताया,
ये जनरल काउंसिल
आज दो ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। पहला निर्णय ये था कि शशिकला को अंतरिम महासचिव के पद से निकाला जाए और उन्होंने दूसरों को जो भी पद दिए वो रद्द कर दिए गए हैं। दूसरा निर्णय ये था कि महासचिव का पद रद्द कर दिया गया है क्योंकि अम्मा का पद कोई और नहीं ले सकता। उस पद की जगह पार्टी चलाने के लिए एक समिति बनाई गई है जो ओ पन्नीरसेल्वम और एडप्पड़ी पलनीस्वामी के नेतृत्व में चलेगी। ये थे मैत्रेयन के शब्द। जनरल काउंसिल के निर्णय का मकसद एक और था कि दो हरे पत्तों वाला पार्टी का प्रतीक को वापस लेना क्योंकि चुनाव आयोग ने उसको फ्रीज कर दिया है। बहरहाल आज के निर्णय से पार्टी की सरकार पर क्या असर होगा, खासकर जब 21 विधायक शशिकला के भांजे टीटीवी दिनकरन के साथ एक रिसोर्ट में रखे गए हैं। हमने यह सवाल राजनीतिक विश्लेषक मालन से पूछा। उन्होंने कहा, आज की बैठक तो एक ताकत दिखाने वाला शो था। इससे अंदरूनी झगड़ा खत्म नहीं हो पाएगा क्योंकि आज की राजनीतिक परिस्थिति ना तो पलनीस्वामी को या टीटीवी दिनकरन को आरामदायक है। ना पलनीस्वामी के पास मेजोरिटी है, ना दिनकरन के पास इतने विधायक हैं कि वो पलनीस्वामी को ही निकाल दें। हाँ, वो सरकार को गिरा सकते हैं, लेकिन केंद्र सरकार तो पलनीस्वामी को ही मदद करेगी और राष्ट्रपति शासन लगा सकती है। इससे दिनकरन को कोई लाभ नहीं मिलेगा। ये थे मालन के शब्द। तो क्या अनाद्रमुक के नेता दिनकरन के साथ कुछ समझौता करने के लिए तैयार हैं? हमने यह सवाल डॉक्टर मैत्रेयन से पूछा। उन्होंने कहा, वो अपना रास्ता पकड़ लेंगे जब कभी विधानसभा में मंजिल परीक्षण होगा। हमारे तरफ से तो कोई समझौता नहीं होगा, वो तो नॉन नेगोशिएबल है। ये थे डॉक्टर मैत्रेयन के शब्द। मतलब ये कि तमिलनाडु की राजनीतिक परिस्थिति ऐसी ही चलते रहेगी। कभी कोर्ट का केस होगा और कभी दिनकरन के गुट से कुछ धमकी आती होगी, लेकिन मामला शायद ही उससे आगे नहीं जाएगा क्योंकि अगर दिनकरन के विधायक समर्थन वापस लिए तो उनको चुनाव लड़ने में मुश्किल होगा। इमरान कुरैशी, BBC बेंगलुरु।
RSS प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि भारतीय संविधान में बदलाव कर उसे भारतीय समाज के नैतिक मूल्यों के अनुरूप किया जाना चाहिए। भागवत ने कहा है कि भारतीय संविधान के बहुत सारे कानून विदेशी सोच पर आधारित हैं और ज़रूरत है कि आज़ादी के 70 सालों के बाद इस पर गौर किया जाए। कुछ लोग इसे हिंदुत्व की सोच को संविधान पर थोपने की एक कोशिश के रूप में देख रहे हैं। एक रिपोर्ट के साथ फैसल मोहम्मद अली।
संविधान को भारतीय नैतिक मूल्यों के तर्ज पर बदलने की बात के साथ साथ हैदराबाद के अपने भाषण में RSS प्रमुख ने यह भी सवाल उठाया कि क्या देश का न्यायशास्त्र भारतीय मूल्यों और नैतिकता को दर्शाता है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्या कहना चाहते हैं वो। क्या ये भारतीय संविधान में ही मूल बदलाव की कोशिश की शुरुआत है? हिंदुत्ववादी विचारधारा वाली पत्रिका ऑर्गेनाइजर और पांच जन्य के समूह संपादक जगदीश उपासने,
तो मैं समझता हूँ कि बहुत एक बड़े लार्जर पर्सपेक्टिव को कवर कर रहा है। बेसिकली जो इंडियन इथोस है और मोरालिटी की बात को ज्यादा वो थ्रस्ट दे रहे हैं। थ्रस्ट ही है, और उसका आधार क्या होना चाहिए? तो उसका आधार जो है वो भारतीय नीति शास्त्र, भारतीय मतलब मॉरलिटी के जो सिद्धांत है।
लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि RSS भारतीयता को सिर्फ हिंदुत्व के नजरिए से देखता है और आलोचक कहते हैं कि इसमें भारत की विविधता और जीवन शैली के लिए कोई जगह नहीं। CPIM के जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी कहते हैं कि ये RSS का पुराना एजेंडा है।
तो इसके अंदर भारत के इकोस के आधार पर लिया ना, वो एक पर्दा है जिसके पीछे वो अपनी एक पूरी की पूरी सांप्रदायिक कट्टरपंथी, वो एक हिंदू राष्ट्र की बात करना चाहते हैं, वो बदलाव वो चाहते हैं।
भागवत के विदेशी विचारधारा के भारतीय संविधान के स्रोत होने की बात पर सीताराम येचुरी आगे कहते हैं,
तो अब ये जमहूरियत भी खत्म करना चाहेंगे। जमहूरियत भी तो भारी इन्फ्लुएंस है, तो अब उनका कहना ये है कि जमहूरियत भी खत्म करो और जाइए उसी जाति के आधार पर, मनुशास्त्र के आधार पर। आपके ये क्या आधुनिक भारत रहेगी या आप जा रहे हो आपके बूथ के अंधेरे में? सवाल आज भारत के सामने ये है, चुनौती वो रिप्रेजेंट करते हैं बूथ के अंधेरे में देश को ले जाना।
जगदीश उपासने कहते हैं कि भारतीय मूल्यों से मोहन भागवत का अर्थ धर्म से है, लेकिन चूंकि ये बात RSS प्रमुख ने कही है तो इसे राजनीतिक दल अपने तौर पर देखेंगे। RSS प्रमुख ने यह भी कहा है कि जो कानूनी तौर पर सही हो वो नैतिक रूप में सही नहीं भी हो सकता है और इस पर विचार होना चाहिए। इस पर संविधान के जानकार सूरज सिंह का कहना है,
फर्क क्या है कानून में और मोरालिटी में। मोरालिटी जैसे कहती है लव योर नेबर, अपने नेबर को भी प्यार करो, सबको प्यार करो, ये है मोरालिटी। लेकिन डोंट हिट योर नेबर, अगर करोगे तो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, ये है लीगैलिटी। मोरालिटी होती है जो लोग अपने दिल से करें, और लीगैलिटी होती है दिल करे ना करे, आप ये चीज नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो कानून उस पे आप पे एक्शन लेगा। तो उनका भावना तो बड़ी अच्छी है, लेकिन ये कहना कि जो मॉरल है वही लीगल हो जाएगा, वो जो है लीगैलिटी और मॉरलिटी में फर्क को समझने की जरूरत है।
सूरज सिंह कहते हैं कि भारतीय संविधान का बड़ा हिस्सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है और उसमें बदलाव की जरूरत से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन संविधान के मूल ढांचे में बदलाव नहीं किया जा सकता, ये सुप्रीम कोर्ट ने 1973 के अपने एक फैसले में साफ कर दिया था। फैसल मोहम्मद अली, बीबीसी दिल्ली। लखनऊ में मेट्रो ट्रेन के चलने का आज एक हफ्ता पूरा हो गया। जोर शोर के उद्घाटन के बाद इसका संचालन शुरू हुआ, लेकिन पहले ही दिन इसमें तकनीकी खराबी आ गई और घंटों ट्रेन ट्रैक पर खड़ी रही। इसके बाद भी कई बार तकनीकी दिक्कतें आईं। लोगों के मुताबिक इन्हीं तमाम वजहों के कारण यात्रियों की संख्या में भी काफ़ी कमी देखी गई है। हालांकि मेट्रो प्रशासन का दावा है कि उसके यात्री लगातार बढ़ रहे हैं। सुनिए लखनऊ से समीर आत्मकेश।
दिन के करीब 1 बजे लखनऊ मेट्रो में भीड़भाड़ होगी, ऐसी उम्मीद हमें नहीं थी, लेकिन घंटे भर के भीतर सिर्फ उंगलियों पर गिनने लायक यात्री ही दिखेंगे, ये भी कम चौंकाने वाला नहीं था। लखनऊ में मेट्रो को दौड़ते हुए पूरा एक हफ्ता हो गया है, लेकिन ट्रेन में बैठने को लेकर लोगों में वैसा उत्साह नहीं है जिसकी उम्मीद की जाती है और जिस तरह से इसकी चर्चाएं थी। राजनीति के अलावा दूसरे कारणों से भी इसकी चर्चा मीडिया में खूब हुई है। चलने के पहले ही दिन ट्रेन का खराब होना और फिर इमरजेंसी गेट से घबराए यात्रियों को बाहर निकालने की घटना मीडिया में जहां खबर बनी, तो सोशल मीडिया में सरकार की खिंचाई करने का जरिया। आसपास के लोग बताते हैं कि ऐसी तमाम वजहों से ही लोग मेट्रो में सफर करने से बच रहे हैं। हालांकि मेट्रो प्रशासन का दावा है कि रोज कम से कम 30,000 यात्री सफर कर रहे हैं। मेट्रो के PRO अमित श्रीवास्तव कहते हैं,
31,000 टू 41,000 के बीच में ही वैरी करते रहे हैं।
लेकिन स्थानीय लोगों के मुताबिक मेट्रो में यात्रियों की संख्या बहुत ही कम है, खासकर ऐसा उन लोगों का कहना है जिन्होंने दिल्ली और नोएडा में मेट्रो की भीड़ को देखा है। इसके तमाम कारणों में एक ज्यादा किराए को भी माना जा रहा है। बहरहाल मेट्रो की यात्रा कर रहे कुछ लोगों से हमने उनके अनुभव जानने की कोशिश की।
बड़ा बेसब्री से भाई हमको इंतजार था इसका, और आज सफर करके हमको बहुत मजा आ रहा है, और इतना मजा आ रहा है कि हम बता नहीं सकते।
ये बहुत अच्छी बात है कि मतलब लखनऊ में पहली बार ये मेट्रो चल रही है, सबके लिए खुशी की बात है, लखनऊ वालों के लिए बहुत गर्व की बात है।
पहले गाड़ी खड़ी हुई, फिर अनाउंसमेंट हुआ, फिर AC बंद हुई, अब लाइट बंद,
खराब हो गई है। बस हम लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है जाने के लिए, मैंने सोचा ट्रैफिक मुक्त होगा, लेकिन अब हम प्रॉब्लम खड़ी हो रही है, अब ऐसा नहीं हो पा रहा कि मतलब क्या दिक्कत आई है हम लोग को नहीं पता है, लेकिन इसके बारे में कुछ तो पता चलना ही चाहिए, क्या हुआ कैसे हुआ।
लखनऊ में मेट्रो का किराया बहुत ही ज़्यादा है, और जितने रुपये में हम मेट्रो का सफ़र 10-15 रुपये बीच में करते हैं, उतने में तो ऑटो जो है हमें उससे कम में ही पहुँचा देता है, और तो वो हमें उसी जगह उतारता है जहां हम उतरते हैं।
इन सब के अलावा लखनऊ मेट्रो में एक और खास बात सामने आई जो दूसरी जगहों से इसे अलग करती है। जांच अधिकारियों को बड़ी मात्रा में गुटखे और तंबाकू के पैकेट मिल रहे हैं जिन्हें वो यात्रियों से जब्त कर रहे हैं। मेट्रो PRO अमित श्रीवास्तव भी इसकी पुष्टि करते हैं।
शुरुआत के दिनों में जब सिस्टम स्टार्ट हुआ था ना 6 तारीख से, तो जाने अनजाने बहुत सारे लोगों ने, यहाँ लखनऊ के पता है बहुत सारे लोग गुटखा तंबाकू सिगरेट पान बीड़ी ये सब इस्तेमाल करते हैं, तो अपने पॉकेट में लेके और ये सब करके वो।
इस बीच मेट्रो में संचालन के दिन से ही आ रही खामियों को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है। BSP नेता मायावती ने आज बाकायदा बयान जारी करके इसे राज्य सरकार की नाकामी बताया है और कहा है कि इन सब से उत्तर प्रदेश की बदनामी हो रही है। बहरहाल अभी एक हफ्ता हुआ है और मेट्रो भी महज कुछ ही स्टेशनों के बीच चल रही है। मेट्रो अधिकारियों का कहना है कि लोग धैर्य रखें, और लोगों का कहना है कि कब तक। समीर आत्मज मिश्र, BBC लखनऊ।
और चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर।
BBC समाचार। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा है कि म्यांमार को रोहिंग्या शरणार्थियों को वापस लेना चाहिए क्योंकि ये लोग म्यांमार के ही हैं। पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या के विरोध में आज बेंगलुरु में 15,000 से ज्यादा लोगों ने प्रदर्शन किया। उत्तर कोरिया ने संयुक्त राष्ट्र की तरफ से लगाए गए नए प्रतिबंधों को खारिज कर दिया है। इस बीच चीन के कुछ बड़े बैंकों ने उत्तर कोरिया के नागरिकों और कंपनियों के खाता खोलने पर प्रतिबंध लगा दिया है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। स्टूडियो संभाल रहे थे तिलकराज भाटिया, रेहान फजल को सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।